भाषा हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। यह किसी की जागीर नहीं है। विभिन्नता में एकता हमारे देश की विशेषता है और इसी विभिन्नता में भाषागत विभिन्नता भी आती है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, परंतु इस माँ का हृदय इतना विशाल है कि ये हर भाषा को आलिंगन बद्ध करके अपने अंतस में समा लेती है। बस यही संबंध हिंदी और उर्दू में भी है। समय समय पर हिंदी ने उर्दू भाषी रसखान, कबीर, रहीम, इंशाअल्लाह खां और मलिक मोहम्मद जायसी को अपने वात्सल्य की डोर से बांधा, तो उर्दू ने भी बढ़कर हिंदी भाषी फिराक गोरखपुरी, कृष्ण बिहारी नूर और मुंशी प्रेमचंद आदि पर अपनी ममता के मोती लुटा दिए। इसी श्रृंखला को एक कवित्री ने आगे बढ़ाया और वो नाम है श्यामा सिंह सबा। सनातनी वाटिका में खिले इस सुमन ने उर्दू की सुगंध सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि सरहदों को तोड़कर सारी दुनिया में बिखेर दी। ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, दोहा कतर और कुवैत आदि देशों में आपने मुशायरे किए और खूब सम्मान भी पाया। 15 मिनट तक अनवरत तालियों की गूंज उनके शेरों पर होती रहती थी। उन्होंने कहा कि वैसे तो हर देश में उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला, परंतु ऑस्ट्रेलिया में उनको सबसे अच्छा लगा। अपने देश में भी उनको बहुत सम्मान मिला। देश के हर कोने में उनको सुना और सराहा गया। ऐसी शख्सियत से चलिए दोस्तों मिलते हैं। नमस्ते सबा मैम, चुभन के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया।
नहीं मैम, ये तो हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ हो आज। और मैम, आज आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और हम आपके आरंभिक जीवन से ही शुरुआत मतलब जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस शायरी की दुनिया में आपने कदम रखा और पहला कदम आपने कहाँ रखा।
शायरी की दुनिया में भावना जी, शायरी तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी
जी,
क्योंकि मेरी माँ जो थी वो बहुत अच्छी गजल सिंगर थी।
अच्छा अच्छा।
तो उसकी वजह से शायर लोग आते रहते थे और सब बातचीत होती रहती थी, नशिस्तें होती थी कभी कभी, वो मैं सुनती रहती थी। तो बचपन से ही एक लगाव, बड़ी मोहब्बत मुझे उर्दू जबान से हुई
जी।
लेकिन उर्दू में पढ़ नहीं पाई।
अच्छा।
बचपन में मैं उर्दू पढ़ नहीं पाई
जी।
और होते 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 जिंदगी आगे इसी तरह बढ़ती चली गई और शायरी में कर नहीं पाई। बचपन में अंदर से ऐसे लगता था जैसे कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता था कि पढ़ाई शुरू थी, घर का कुछ ऐसा माहौल था कि नहीं पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई जरूरी है। तो वो पढ़ाई में लगी रही मैं। हाई स्कूल किसी तरह से पास हुआ, उसके बाद देवेन नाम के शख्स से जिंदगी जुड़ गई
जी जी,
और शादी हो गई
जी।
उसके बाद बच्चे होते गए। पहले के जमाने में तो हम लोगों को कमी थी नहीं या दो, बहरहाल बच्चे, चार बेटियां और दो बेटों से ऊपर वाले ने मुझे नवाजा
जी जी।
और उस गृहस्थी में, उस जिम्मेदारियों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में मैं बिल्कुल बंध गई और फिर होश ही नहीं रहा ना शायरी का रहा। लेकिन अंदर से कुछ चुभन होती रहती थी
जी,
वो खटकता रहता था, कुछ ऐसा लगे कुछ टूटता जा रहा है। बहरहाल 1992 में
जी,
हमारे यहाँ पे एक एसपी की पोस्ट पे तैनात थे मिस्टर रिजवान अहमद साहब
जी जी।
तो ये जन्माष्टमी में कार्यक्रम होता है, कृष्ण जी का जन्म वगैरह बड़ा उत्सव बड़ा बढ़िया मनाते हैं वहाँ
जी जी।
तो वहाँ मुझे भी एक सिंगर जो थे उसने इनवाइट थे, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया और उस प्रोग्राम में ले गए मुझे
जी।
तो वहाँ पहले तो मैंने एक भजन गाया क्योंकि मुझे संगीत से भी मैं थोड़ा जुड़ी थी
जी जी।
और उसके बाद मैंने गजल वहाँ पे पढ़ी।
जी
तो एसपी साहब जो थे वो गजल के और उर्दू के मतलब शायरी के बहुत शौकीन थे और बहुत ही जहीन आदमी, बहुत नेक इंसान।
जी
तो उसके बाद फिर कई प्रोग्राम में वो मुझे इनवाइट किए, अपने बंगले पे भी नए वर्ष पे प्रोग्राम किया, उसमें भी इनवाइट किया और होते होते काफी दिनों तक ये सब सिलसिला चलता रहा। बहरहाल एक दिन उन्होंने कहा कि आप मुशायरों में क्यों नहीं जाते हैं?
जी
क्योंकि मैंने एक नशिश भी की थी उनकी अध्यक्षता में।
जी जी
तो वो आए थे, बहुत छोटा सा प्रोग्राम था लेकिन आए वो, और वो मुझे हमेशा मतलब प्रोत्साहित करते थे, हौसला देते थे कि आप मुशायरे में आए। थोड़ा करीब आने के बाद कुछ मेरे हालात से भी वाकिफ हुए वो।
जी जी
तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ सर, देखती हूँ। उसी तरह से टलता रहा। बहरहाल 1993 में सोचा मैंने कि मैं थोड़ा सा मुशायरों से जुड़ू और मुशायरों में आऊं,
जी
कुछ कहने की कोशिश करूं। तो बस लखनऊ गई हुई थी और वही प्लेटफॉर्म पे ढूंढ कुछ और है, लेकिन एक शायरी आ गई दिमाग में और एक मतला आया।
जी
मतलब यूं था भावना जी कि वो यूं वो दिल के करीब लगता है, यूं वो दिल के करीब लगता है जैसे मेरा नसीब लगता है, जैसे मेरा नसीब लगता है। वो कल ही रुखसत हुआ है वो घर से, आज ये घर अजीब लगता है। तो ये हुई, बस मैं चौंकी, मैंने कहा मैं तो कुछ कह रही थी शायद। तो मुझे याद आया कि हाँ, फिर ट्रेन में बैठ के 2-3 शेर उल्टे सीधे
जी अनायास हो गया सब।
हाँ, तो मेरे शहर में एक बहुत बड़े हमारे उस्ताद मोहतरम नाज प्रतापगढ़ी साहब।
जी जी बिल्कुल,
वो रहने वाले तो प्रतापगढ़ के हैं लेकिन यहाँ पे हेडल विभाग में उनकी पोस्टिंग थी।
जी
तो बस मैं उनके कदमों में पहुंच गई और मैंने उनसे गुजारिश की। तो बहरहाल बहुत उन्होंने मेरी शायरी को संवारा, निखारा और मुझे बहुत कुछ बताया उन्होंने।
जी जी,
और बहुत हौसला दिया, बड़ी दुआएं दी। और पहला मुशायरा जो है वो मैंने यहाँ रायबली से 30 किलोमीटर आगे एक सिमरौता जगह है।
जी,
तो वहाँ स्वर्गीय राजू जी की याद में एक कार्यक्रम था।
जी,
तो पहला कार्यक्रम वो मुझे नसीब हुआ। और यकीन मानिए कि दूसरे दिन जब मैंने पेपर उठा के देखा तो सारे पेपरों में मेरे गीत की हेडिंग।
जी बिल्कुल,
बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और 50 रुपए का पेमेंट हुआ था।
अच्छा जी,
हाँ, जिसको मैंने 21 रुपए तो अपने उस्ताद मोहतरम के कदमों में रखा, 11 का प्रसाद चढ़ाया, बाकी बच्चों में बांट दिया।
जी जी,
ये रही मेरी शुरुआत।
तो मैम, जैसा आपने बताया भी कि हिंदू मजहब में पैदा होकर उर्दू में आपने रचनाएं की, तो हाँ, कारण तो आपका समझ आ गया कि आपको उर्दू जुबान बहुत पसंद थी, लेकिन क्या हाँ, कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा?
अरे मुश्किलें तो बहुत आती बेटा, एक तो मैं उर्दू पढ़ी नहीं थी।
जी जी,
सबसे बड़ी बात ये, लेकिन फायदा मुझे ये मिला कि बचपन से जो मुझे उर्दू पसंद थी
जी,
तो मैं तलाश करती रहती थी, लोगों से पूछती रहती थी। मेरी फ्रेंड भी ज्यादातर मुस्लिम बनी।
जी जी,
तो उनसे इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कभी कभी लोग भगा भी देते थे, क्या दिन भर पूछती रहती है, ये पूछती वो पूछती, क्या शायरा बनेगी क्या।
जी,
उसका भी मुझे फायदा मिला। और एक पढ़ाई के ही दौरान जब मैं 3री क्लास में थी, मुझे याद है चित्रे
जी,
तो एक हेडमास्टर आए थे वहां पे ट्रांसफर होके झांसी से।
जी,
वो बैंजो बहुत अच्छा बजाते थे।
अच्छा,
तो मैं उनके पास जाती थी, उनके घर में थोड़े छोटे मोटे काम कर देती थी, उनके बेटे को खिलाती थी। और एक दिन ऐसे में गुनगुनाने लगी तो फिर वो तो बस रोज मुझे बुलाते थे और बैंजो पे खूब गाना सुनते थे मुझसे।
जी,
तो वो भी मुझे तलफ्फुज पे बहुत मतलब ध्यान देते थे, बेटा ऐसे है, इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे, तो इससे मुझे उसका फायदा मिला।
तो ये आपका सौभाग्य रहा मैम कि आपको उस्ताद भी अच्छे मिले, ये भी हाँ, एक बहुत बड़ी बात होती है।
हाँ, और फिर संगीत सीखने के लिए भी एक उस्ताद हमारे आए थे मुरादाबाद से।
जी जी,
जनाब अब्दुल वहीद खान साहब।
जी,
और हमारे रायबरेली में भी एक बहुत बड़े जाने माने जो बहुत संगीत सम्राट थे, समझ लीजिए मोहम्मद रशीद खान साहब। उनसे भी थोड़ा बहुत मैंने संगीत सीखा था, तो उसमें भी मुझे काफी लोगों से उर्दू के उसमें मुझे फायदा पहुंचा
जी।
बहरहाल चलता रहा किसी तरह, जहां भी जाती थी माँ सरस्वती की कृपा और मेरे उस्ताद की दुआएं
बिल्कुल,
कि अगर एक प्रोग्राम में मैं जाती थी तो वहां से भावना जी मुझे दो प्रोग्राम तो और मिल ही जाते थे।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
इस तरह से मैं, हालांकि मेरी उम्र 40-41 साल की हो चुकी थी तब तक
जी,
मतलब एक बुढ़ापा आ चुका था
जी, जी।
मुशायरों में ये दौर होता है 40-41-42 के बाद शायरा विदाई होती है, रुखसती होती है उसकी मुशायरों से
जी,
मतलब खत्म होने लगती है।
मुझे तो लगता है मैम अनुभव बढ़ता जाता है तो उनकी ज्यादा कद्र होती है इस उम्र में।
बेटा वो सब वक्त चला गया
जी,
अब तो अनुभव कोई देखता नहीं, ये तो आप भी जानती हैं
जी बिल्कुल,
क्या मुशायरों के मैदान में क्या हो रहा है, उसके स्टेज पे क्या क्या चल रहा है, वो कुछ कहने की जरूरत।
ये चीज बड़ा दर्द देती होगी मैम आप लोगों को, तो बहुत ही ज्यादा खलता होगा।
हाँ बिल्कुल, तकलीफ तो होती है कि क्या मुशायरे होते थे, लोग तब सुनने जाते थे, कहते थे अरे भाई आज मुशायरा है चलो सुनने चलते हैं।
बिल्कुल,
अब लोग कहते हैं कि यार मुशायरा है चलो देखने
देखने चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा।
हाँ, तो ये सब दर्द तो है ही है। अब मैं तो बहुत खुश हूँ भावना जी की बहुत ही इज्जत के साथ
जी जी
मुझे वहां से विदाई मिली और बड़े अदब के साथ में बिल्कुल बादअब वहां से रुखसत हुई। कोई माई कलाल ये दावा है मेरा
जी,
मेरे करेक्टर पे या मेरी जबान पे कोई उंगली उठाई नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है
जी
दुनिया में। हाँ
बहुत मैं आप जी।
हाँ और मैंने अपने रिलेशन बनाए वहाँ, किसी को भाई कहा किसी को बेटा कहा
जी बिल्कुल,
अगर वो 60 साल का भी है तो भी मैंने उसको बेटे कह के नवाजा
जी जी।
तो ये सब रहा, लेकिन वो है कि एक फितरत होती हो तो कहीं ना कहीं इंसान की जाहिर होती हो जाती है। इस तरह से मेरा गजल का मुशायरों का दौर शुरू हुआ और 2006 में
जी
मुझे दुबई जाने का मौका मिला
जी जी,
बगैर किसी की रिकमेंड, बगैर किसी की सिफारिश, बगैर किसी के सहयोग के मुझे उन्होंने सुना, जो दुबई के कन्वीनर थे वो एक प्रोग्राम में मौजूद थे
जी,
और वहीं उन्होंने मुझे अपना हुक्म दिया कि आपको जो है जनवरी में दुबई आना है
जी।
और दुबई मुसलसल में 4 बार गई, 4 साल बराबर गई।
वाह।
हाँ उसके बाद फिर मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, पाकिस्तान से फिर मैं दोहा कतर गई, दोहा कतर के बाद 2007 में शायद मैं ऑस्ट्रेलिया गई
जी,
जबकि उस वक्त कोई भी शायरा ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंची थी
जी जी,
जबकि बहुत सीनियर और वाकई वो शायरा हुआ करती थी पहले जमाने की।
बिल्कुल
भावना जी, सच बोलने में डरना नहीं चाहिए।
बिल्कुल मैम,
लोग झूठ बड़ी आसानी से बोलते हैं लेकिन झूठ बहुत बेकार चीज होती है मेरी निगाह में
जी,
और झूठ को बोलने में कितनी खूबसूरती से बोलते हैं, लेकिन मैं सच को बोल रही हूँ बड़ी खूबसूरती से कि मैं वास्तव में इतनी बड़ी शायरा न तब थी न आज हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया और न मैं थी, लेकिन एक चीज में जरूर मैं सबसे बड़ी थी
जी,
कि मैंने कभी किसी से पेमेंट नहीं मांगा
जी जी,
कभी भी नहीं, रिकॉर्ड है, कोई कह नहीं सकता कि श्यामा सिंह सभा ने नजुराने की रकम तय की है
जी।
वो मुझसे पूछते थे तो मैं साफ कहती थी कि आपने कुछ तो सोचा ही होगा, वो कहते थे सभा जी इतना है, हाँ भाई बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू शुक्रिया आपका। तो ऐसे ऐसे रहा मेरा, अब पता नहीं सब कुल मिलाकर बहरहाल मैं बहुत मुशायरों की दुनिया से बहुत खुश, बहुत संतुष्ट, बहुत कुछ मिला
जी। बहुत जाना पहचाना सम्मानित नाम है मैम आप, और हम तो गर्व महसूस कर रहे हैं कि चुभन के पटल पर आप आज हैं। और मैम आपने इतने देशों की यात्राएं की, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा?
सबसे अच्छा सच्चाई तो ये है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा लगा।
अच्छा,
क्योंकि वही शायरी, वही गजलें, वही सब कुछ, वही मैं, हर जगह वही सब कुछ होता था, लेकिन वहां का मैं क्या बताऊंगा आपको कि दो शायर हमारे हिंदुस्तान से भी गए थे जो मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे कि मैं कैसे आ गई
जी,
उन्होंने तमाम शायरों को मना भी किया था कि श्यामा सिंह सभा का नाम मत देना, फोन नंबर मत देना।
मैम यहीं पर मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या एक हिंदू शायरा थी आप, इसलिए ऐसा होता था कि और कोई वजह?
हिंदू शायरा भी थी, बूढ़ी भी थी, बहुत खूबसूरत भी नहीं थी, और जो आजकल की डिमांड है उसके लायक भी नहीं थी मैं
जी। लेकिन आपकी कला की कद्र हुई और जिनको करनी थी उन्होंने आपको पूछा।
वहाँ के लोगों ने, मतलब जिस वक्त मैं पढ़ रही थी वहाँ पे, समझ लीजिए कि कम से कम वहाँ के जो सुनने वाले सामईन हजरात थे वो 15 मिनट तक प्लेटिंग करते रहे।
देखा मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, सर आंखों पर आपको बैठाया गया बिल्कुल।
तो इसलिए मुझे, और वही मुझे तुरंत मतलब अवार्ड भी दिया गया, बेस्ट पोएट्री और बेस्ट वॉइस का
जी
अवार्ड भी मिला। फिर मैं, 3 मुशायरे थे मेरे ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी, कैनवरा, मेलबर्न, तीनों जगह मुझे अवार्ड से नवाजा गया।
जी जी,
और बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान में भी हमारे एक वहाँ के होम मिनिस्टर थे
जी जी,
डॉक्टर मारूफ साहब, वो खुद भी बहुत अच्छे शायर थे, तो इसलिए वो शायर ही बन के हम लोगों को डील किया। और वहाँ भी उस वक्त का टाइम थोड़ा अच्छा था, 2006 में गई थी मैं।
जी जी
हाँ, 2006 में गई थी। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैं कुवैत गई और दोहा कतर गई, नेपाल गई, वहाँ के गवर्नर साहब ने बुलाया था मुझे। तो ये सब चीजें रही जो कि मैं बिल्कुल, कभी भी मुझे यही लगता था कि ये ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन बेटा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ।
जी मैम,
शायद आपको पता हो।
जी जी, मैं जानना चाहूंगी मैम इसके बारे में।
वो जिंदगी ने ऐसा धोखा दिया और करवट बदली कि दो बेटे थे मेरे।
जी जी,
एक 22 साल का और एक 18 साल का।
जी,
चार बेटियां थी, तो बेटियां तो बड़ी इज्जत के साथ, जैसे भी हो सका उनको हमने ब्याह दिया।
जी जी,
इज्जत से वो रुखसत हुई। लेकिन 97 में मेरा एक छोटा बेटा जो 18 साल का था
जी,
उसकी डेथ हो गई।
उफ।
और सबसे प्रिय था वो मेरा, सबसे छोटा था, सबसे प्रिय था।
बिल्कुल।
और भावना जी, बहुत खूबसूरत बच्चे मेरे, बेटियां भी, बेटे भी बहुत बहुत खूबसूरत। तो वो अभी मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाई थी और बर्दाश्त भी नहीं हो पाया था, पूरी तरह से मैं संभल नहीं पाई थी कि 1 साल 3 महीने में मेरा दूसरा बेटा जो 22 साल का था। और उस दिन मैं थी बनारस के रेलवे का मुशायरा था, वहां गई हुई थी। मेरी दोस्त ने फोन किया बगैर मुशायरे की, मैं वहां से बाई रोड भगी और यहाँ आके देखा तो ये सब, तो सब कुछ तो उजड़ गया था मेरा।
जी जी बिल्कुल,
समझ में नहीं आ रहा था। मैं न तो रो पा रही थी, न हंस पा रही थी, न कुछ बोल पा रही थी। ये बड़े बेटे में बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रही थी। लेकिन और उसी जगह कुछ हमारे बड़े अच्छे शायरों ने ये भी तंज किया कि अब क्या, अब तो खत्म ये, अब क्या मुशायरा पढ़ेंगे, ये हो गया जो पढ़ना था पढ़ चुकी। मतलब एक, अब क्या बताऊं जिस अंदाज में आप समझ रही हो।
समझ गई मैम बिल्कुल।
तो बस 27 ही दिन हुए थे मेरे बेटे को गए हुए, बड़े वाले को भी, कि मैं मुशायरे में चली गई। मैंने पढ़ना शुरू किया, हालांकि कई मुशायरों में मैं भी रोती रही, पब्लिक भी रोती रही साथ साथ, लेकिन अपने को फिर मैंने संभाला और सोचा कि मैं यहाँ रुलाने थोड़ी ना आई हूँ।
बिल्कुल,
क्यों मेरे गम में कोई रोए और क्यों इस तरह होए। तो कुछ दिन के बाद बड़ा बेकार इसका पैगाम जाएगा। बहरहाल ऊपर वाले ने संभाला, मैं क्या संभलती। और फिर से मुशायरों की दुनिया में मैं अपना उसी तरह से पढ़ने लगी, आने जाने लगी।
जी,
ये था मेरा मुशायरों का सफर।
मैम, ईश्वर ने जो भी किया उसे आपने ईश्वर का प्रसाद ही समझकर ग्रहण किया। तो
बस बेटे, वो तो सबके साथ है।
जी बिल्कुल,
कोई नया तो है नहीं, लेकिन बस एक है कि ये अगर एक के साथ होता तो बड़ा मुश्किल होता, कोई जी नहीं सकता था।
सबके साथ है जी।
और लेने से पहले वो एक वासिफ साहब है आपके लखनऊ के, बहुत अच्छे शायर हैं।
जी जी,
उनका एक शेर है कि जो जख्म देता है वही मरहम भी वही देता है। तो जख्म देता है तो मरहम भी वही देता है, एक मिश्रा याद है मुझे
जी।
तो ऊपर वाला लेने से पहले सब्र देता है, तब वो लेता है
जी।
तो ये भी हमारे कर्मों का ही फल था जो हमें मिला। और जरूर कहीं ना कहीं मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी की हो।
नहीं मैम, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग जो होते हैं उनको ईश्वर कष्ट देते हैं, शायद उनकी परीक्षा लेते हैं, और हम लोग ज्यादा सा कुछ होता है तो घबरा जाते हैं या कहने लगते हैं कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, उसने हमें ऐसा दंड दिया। मैं जानना चाहूंगी मैम आपसे, हम सीख लेना चाहेंगे कि आप कहाँ से इतनी हिम्मत लाते हो।
कुछ नहीं बेटे, कोई लाता नहीं, मसूप आप जैसे अपने ख्याल, जैसे अपने विचार, जैसा सोचोगे, जैसा मन बनाओगे, जैसे भाव लाओगे, ऊपर वाला उसी तरह आपको बना देता है। आप बन के तो देखिए
बिल्कुल
कैसा वो बनाता है। आप बुरे रास्ते में जाएंगे वो बिल्कुल ढील छोड़ देता है, अपनी रस्सी को ढीली करता है। बेटा जितना कर सकते हो गुनाह उतना कर लो।
जी बिल्कुल।
लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है तब फिर वही याद आता है, कोई और दूसरा नहीं याद आता है। तो उसकी बहुत कृपा है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं हुए होंगे, कोई बुरा ना किया होगा, किसी के साथ जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, जिसका इस उम्र में, इस बुढ़ापे में मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ, वो तो अब ठीक है, उसका कर्म है, उसकी नवाजिश है, उसने कोई मुझे शिकायत
नहीं है। मैम आपके इतने सारे लोग आपको चाहने वाले, आपकी कला सबसे पहले तो आपके साथ है और फिर हम सब लोग आपको चाहने वाले आपके साथ है, तो आप तन्हा कहाँ से हो गए।
नहीं नहीं बेटा, लेकिन वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन ये खुद फॉलो करना पड़ता है अपने को। जो भी अपने सामने प्रॉब्लम आती है, जो भी अकेलापन होता है, कुछ होता है, उसको आदमी बेटा स्वयं ही फॉलो करता है। आप तक जब बात पहुंचेगी तब ना आप मेरे करीब आओगे।
बिल्कुल मैम बिल्कुल।
तब मेरा साथ दोगे बेटा, यहाँ तो मैसेज पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है।
नहीं नहीं मैम, अच्छे लोगों के संदेश जो है वो पहुंच जाते हैं जहाँ जाने चाहिए। देखिए आपको हमने ढूंढ लिया, और कोई भी बात होती है तो हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन आप जैसे लोगों से जब हम बात करते हैं तो सच मानिए बहुत सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों से भी नहीं घबराना चाहिए, इतने बड़े
बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हिम्मत से ही सब कुछ होता है और घबराने से सब चला जाता है।
बिल्कुल
नहीं पाता आदमी।
बिल्कुल आप मैम लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र में है, तो उस समय और आज के समय में क्या अंतर पाती हैं? बहुत अंतर आ गया, जैसा अभी आपने मंचों का ही कहा।
हाँ बहुत अंतर है बेटा, अब तो मैं तो यही खुश हूँ कि मैं तो इज्जत के साथ वहाँ से रुखसत हुई। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है और बहुत ऊपर वाले माँ सरस्वती की कृपा है, वरना आज जो मैं देख रही हूँ मेरे सामने ही से शुरू हो गया था सब।
बिल्कुल
बहुत अजीब से लिबास, बहुत अजीब सा उठना बैठना, बहुत अजीब सी गुफ्तगू, तो उसका जिक्र करना भी नहीं चाहती हूँ मैं। बस यही है कि अब तो बस, पहले था कि आवाज की पटरी पे गजल दौड़ रही है, किसी का शेर था, लेकिन अब ये हुस्न की पटरी पे गजल दौड़ रही
है। बहुत सही,
बस ये है, और इससे ज्यादा कुछ कहना बेकार है।
बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।
थोड़े में आपने बहुत कुछ कह दिया मैम, कुछ सुनना चाहूंगी मैम आपसे, हमारे श्रोता आपको सुनना चाहेंगे।
जरूर जरूर सुनाऊंगी बेटा, मैं एक गजल सुनाती हूँ, 3 शेर मैं हाजिर करती हूँ।
जी बिल्कुल।
और भावना जी मैं थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल के बारे में
बिल्कुल जानना चाहूंगी मैम, मैं पूछना चाह रही थी पर संकोच में मैंने पूछा नहीं, आप बिल्कुल बताएं उनके बारे में।
नहीं मैं बताऊँ आपको
जी
कि मेरे पैर बहुत खराब हो गए थे, गठिया पता नहीं क्या कोई बीमारी हो गई थी।
जी जी।
और उसमें बहुत परेशान थी मैं
जी,
तो पता नहीं एकाएक मेरे दिल में आया कि मैं भागवत कराऊं।
जी
है ना।
जी जी।
और अंदाजा नहीं था कि भागवत में कितनी मेहनत और कितना काम, कितना क्या क्या होता है।
जी, बिल्कुल
इतना अंदाजा नहीं था। तो मैंने एक मीटिंग की अपने मोहल्ले में
जी,
और लोगों के सामने बात रखी, तो साफ लोगों ने जवाब दिया कि श्यामा जी ना तो हम लोग टाइम दे सकते हैं ना इसमें बैग खर्च कर सकते हैं। पूरा साफ जवाब था
जी,
अच्छे अच्छे पंडितों का भी।
जी जी।
तो मैंने कहा आपको कह के ऐसा गुनाह मत लीजिए, आप पैसा मत दीजिए, आप समय दे दीजिए, वही बहुत है मेरे।
जी।
बहरहाल फिर एक मीटिंग की दोबारा, फिर उसमें यही हमको जवाब मिला। फिर तो मैंने अपने कान्हा जी का नाम लिया
जी,
और लग गई। एक छोटी मोटी गाड़ी थी अपने पास।
जी जी।
लेकिन अब गाड़ी पे बैठे बैठे तो सब काम हो नहीं सकते।
बिल्कुल नहीं।
बहरहाल उसकी तैयारी में भावना जी मुझे 2 महीने लग गए।
जी बिल्कुल लगे होंगे मैम,
भागवत कराने के। उसमें एक यहाँ पे हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं, मोहम्मद इलियास साहब, उनका मन्नी करके नाम है, मन्नी नाम से मशहूर है
जी,
उन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया। मुस्लिम है वो
जी।
अच्छा। इतना साथ दिया भावना जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे घर के पास एक पार्क था नगर पालिका के अंदर में, बरसों का गंदा वो पार्क
जी,
उन्होंने उसकी वो सफाई कराई, वो सफाई कराई कि बेहतरीन, बिल्कुल एक सुई भी गिरे तो मिल जाए।
वाह।
और एक विधायक जी थे दिनेश प्रताप सिंह, उनसे मैंने कहा बैरिकेटिंग करा दीजिए, वो हो गई। बहरहाल उन्होंने होर्डिंग से लेके, पैसों से लेके, कार्ड से लेके, मतलब जो भी मैंने उनसे कहा होगा
जी जी,
इलियास साहब से, वो पीछे नहीं रहे, बहुत किया।
बताइए।
खैर बहरहाल भागवत संपन्न हुई बेटे, शुरू हुई
जी जी।
एक बहुत अच्छे गुरु जी राजन जी महाराज आए, उसमें बुलाया मैंने उनको। और मैं बताऊं भावना जी आपको कि उस वक्त कम से कम तीन चार भागवत जिले में हो रही थी
जी।
पहले दिन तो कुछ भीड़ भाड़ न देख के मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, और बहुत बड़ा पंडाल मैंने लगवा रखा था 72 फीट
जी,
तो वो बड़ा मुझे वो लग रहा। लेकिन दूसरे दिन से बेटा वो भीड़, वो लोग, वो आए, और ऐसी भागवत, ऐसी भागवत, ऐसी भागवत हुई कि बिल्कुल चमन बरस रहा, और सारी भीड़ हमारी भागवत में। और ये मैं नहीं, लोग कहते थे, आगे लोग बताते थे
जी जी।
और मैंने बस ये महसूस होता था हर वक्त कि मैं नहीं, मेरे बाकी बिहारी बैठ के पूरा काम देख रहे हैं और पूरा संपन्न करा रहे हैं। फिर भागवत हो गई, बहुत लोगों ने मुझे कहा, और इसमें मुझे भरोसा भी है, कह रहे श्यामा जी तुमने तो अपनी अपना ये जिंदगी तो तुमने बना ली
जी।
तो मैंने कहा क्या सच कह रहे हैं आप? बोले हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये तो पद आपका बन गया इसमें तो। मैंने कहा सारे पाप धुल गए? बोले हाँ धुल गए। तब से पता नहीं क्यों एक मन में था कि कोई लड्डू गोपाल मुझे देता, कोई लड्डू गोपाल मुझे देता।
तो मैम एक मिनट आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपके बेटे असमय जो चले गए उसके बाद की ये बात है?
हाँ ये तो अभी की बात है, तीन चार साल पहले
जी।
तो 15 में भागवत कराई
जी,
और 18 में ये हमारी बेटी दिल्ली ब्याही, वहाँ भागवत, वो उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी
जी जी,
वहाँ मैं गई। तो मेरी बेटियों ने पहले से कुछ अपना प्रोग्राम बना के रखा था।
अच्छा।
कि अब की जो है इसी प्रोग्राम में मम्मी को लड्डू गोपाल जी दिए जाए। और बस बेटा वो मैं बैठी रही तो हमारी बेटी ने कहा कि अरे मम्मी कुछ लिख के नहीं लाई आप मेरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए
जी?
तो मैंने कहा क्या लिखूं बेटा तुम्हारे लिए, बस खुश रहो तुम, कह लें दो लाइन चार लाइन कुछ लिखिए। तो मैं लिखने बैठी तो लिखना क्या चाहिए, मैं लिख क्या रही हूँ
जी
कि ऐसे लग रहा जैसे कान्हा मिलने वाले हैं। बेटा सच बोल रही हूँ भावना की,
मान रही हूँ मैम,
दो बेटे नहीं है दुनिया में उनकी सौगंध खा रही।
अरे नहीं ऐसा नहीं कहे, मैं बिल्कुल मान रही हूँ आपकी बात को।
कि ऐसे लग रहा जैसे कान्हा मिलने वाले हैं, मेरे सूने आंगन में फूल खिलने वाले हैं। तो मेरी नवासी वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, मैंने उसको बुलाया
जी।
मैंने कहा यार देखो मैं मेघा लिखना कुछ चाह रही थी, ये क्या लिख रही हूँ मैं, देखो ऐसे ऐसे। तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा बड़े गौर से
जी,
है ना, उन सबको तो पता था कि कल कान्हा दिया को देना है नानी को।
बिल्कुल।
तो मुस्कुराए दोनों
जी,
क्या बात है तुम लोग मुस्कुरा रहे हो। तो वो उसने जरा सा आग का इशारा किया अपनी माँ को कि बताना मत
जी।
उस वो अपने हंस के मम्मी कुछ नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अब वो बेटा दिन में कथा शुरू हुई, कथा में एक लड्डू गोपाल को सजा संवार के ऊपर भी रखा गया, और ऑलरेडी पहले से मेरी बेटी के पास 3 लड्डू गोपाल, तब भी मैं समझ नहीं पाई कि ये मेरे लिए हैं।
जी जी।
कथा हो गई, प्रसाद हो गया, सारी औरतें बैठी हुई, तो हमारी बेटी हमको कुर्सी पे बिठा के बोली आंख बंद करो
जी।
आंख बंद की, बोले दोनों हाथ आगे करो। अब लड्डू गोपाल का आना था बेटा कि फिर तो पूछो ना, मेरे तो बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ मिल गया, अब कुछ बाकी ही नहीं है, कुछ खालीपन है ही नहीं अंदर। तो बस एक 5,000 की गड्डी पड़ी थी, वो मैं खोल खोल के सब औरतों को 50-50 रुपए
जी जी
कान्हा जी की निछावर में, जिसको नहीं मिला वो भी दौड़ के आई, हमें नहीं मिला आंटी, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, सबको दिया। और बेटा फिर तो लड्डू गोपाल के उसमें मैं बस इतनी खुश हुई कि आज चौथा साल है मेरे पास है लड्डू गोपाल जी, और मैं बहुत 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 खुश हूँ। बहुत
मगन उनके कुछ नाम भी शायद रखे हैं मैम,
सोनू मोनू
बिल्कुल
सोनू मोनू है मेरे वो। पहले मेरा जी चाहता था मैं राजू गुलाब रखूं, मेरे बेटों का नाम था
जी जी,
लेकिन फिर लोग कहते हैं ना कि जो दुनिया से चला जाए उसका नाम किसी को नहीं
देते, नहीं देते जी,
तो मैंने कहा लड्डू गोपाल को भी नहीं दूंगी, उनका सोनू मोनू नाम रखा। और मेरी तन्हाई दूर हो गई, मेरे आंसू सूख गए, सब खत्म हो गए, वरना अब क्या कंडीशन थी मेरी, कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, कहाँ दिल बहलाऊं, क्या करूं, मतलब ये। और मिजाज भी हरेक से नहीं मिलता था
बिल्कुल,
तो बस वही था कि बहुत मुश्किल से मेरी जिंदगी के वो टाइम गुजरे जब मैंने मुशायरा छोड़ा।
उनको साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन, कृष्ण जी के दर्शन हो गए मैम?
नहीं बेटा, इस लायक कहाँ की उनके नहीं दर्शन हो जाए ना,
अगर दिन साफ हो और हम भक्ति रखे तो हम बिल्कुल,
कहाँ मन साफ है, कहाँ मन साफ हो गया, रख लेने से कोई मन थोड़ी ना, ये तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हत्या ही कोई। अभी तो एक चावल के दाना के बराबर भी उनकी भक्त नहीं हो पाई, ये जो सब कर रही हूँ ना ये तो अपने मन की शांति के लिए।
इतनी उदारता है जो आपके मन में, यही आप
नहीं, बिल्कुल सच है, मैंने कहा ना कि सत्य बोलना चाहिए,
बिल्कुल मैम,
हाँ तो सत्य बोल रही हूँ, बहुत झूठ बोले होंगे ऐसा नहीं है, और बोली हूँ याद भी है, लेकिन एक हाँ ये जरूर है कि अब डर लगता है कि नहीं सच बोलो। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके बताए हुए कुछ उस पे चलो, कुछ पालन करो, सहायता करो लोगों की, मदद करो। और एक मैं बड़ी खुशनसीबी और है हमारे साथ में, एक कटनी एक जगह है जबलपुर के पास,
मैं उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी।
हाँ तो वहाँ के जो जो उसको देख रहे हैं, जो उसके कर्ता धर्ता है डॉक्टर समीर चौधरी
जी,
और उनकी मिसिज भी है डॉक्टर नेहा चौधरी, उनके परिवार में कई डॉक्टर हैं, उनका एक अपना हॉस्पिटल है लिटिल स्टार चिल्ड्रन होम के नाम से वो आश्रम है
जी जी,
आप सर्च करेंगी तो निकलेगा। भावना जी मैं क्या बताऊं, मैं तो विदेशों में भी हुआ ही, लेकिन ऐसा रहन सहन, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा रख रखाव, ऐसा बच्चों के लिए इंतजाम, कपड़े साबुन सर्फ मंजन ये वो, जूते मोजे बनियान क्या क्या, मतलब हमने देखा नहीं
जी
अपनी जिंदगी, जो वहाँ सुविधा है।
तो मैम वहाँ पर अनाथ बच्चों सहित सभी आपको अम्मी जी कहते हैं अपने इस ममता में,
दादी कहते हैं, दादी
दादी। अच्छा तो इस ममता में सफर के बारे में अपने आप कुछ बताएं।
बस वहीं जाना है मुझे, आखिरी जीवन वहीं गुजारना है, वहाँ मेरा रूम बना हुआ है
जी जी,
और मैं ये थोड़ा जो झमेला है मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ है इसको एक किनारे लगाऊं मैं बेटा, उसके बाद वो पैसा चाहे वहां मैं दूं या यहां कहीं दूं, जो भी होगा जैसा भी, मैं नहीं जानती हूं कि मैं क्या उस वक्त क्या मिजाज होगा, क्या पता कोई पाप आ जाए दिमाग में। बहरहाल अभी तो यही भावना है कि हला उन बच्चों को कोई कमी नहीं है, ना उनको कोई जरूरत है
जी,
ना डॉक्टर साहब की कोई डिमांड है, वो मुझे माँ की तरह मानते हैं, मुशायरों से मेरी उनकी जान पहचान हुई, इतनी सी बात पे वो भी मुझसे मुतासिर हुए थे, उन्होंने एक मुशायरा किया था और मेरा नाम कहीं सुना था, मुझे बुलाने के बोले हम आपको सिर्फ 5,000 दे सकते, मैंने कहा अगर ये भी ना हो तो मत दीजिएगा मैं आऊंगी
जी,
इतनी सी बात पे मेरा उनका माँ बेटे का रिलेशन बना। हाँ
देख लीजिए मैम, अगर अच्छा कार्य करो तो हमें ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हाँ,
बेटा मेरे साथ 2-3 लोग मेरी जिंदगी में ऐसे हैं, एक तो कवि हैं बहुत बड़े है, और इन दिनों तो उन्होंने संन्यास ले लिया, शायद आप उनकी नजर गुजरी हो, राजकुमार सचान हो
जी, जी।
गुजरी है,
सुना है नाम मैम उनका मैंने,
वो मैं राखी बांधती हूँ उनको बेटा 30 साल से, कमिश्नर से रिटायर हुए हैं वो मेरठ कमिश्नर
जी जी,
और आज भी उनकी मिसेस से भाभी से मेरी बात हुई है, वही बिल्डिंग है उनकी सहारा में, तो मेरे संबंध है। और एक कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे पहले मिस्टर धर्म सिंह जी,
अच्छा
वो भी शायरी के बहुत ही शौकीन, बहुत शौकीन
जी जी,
इतने शौकीन कि मैं आपको क्या, उन्होंने मुझे मुशायरों से ही सुना और बड़ी इज्जत दी, अपने घर बुलाया, फिर मुझे बहन कहा, बहन बेंगलोर में भावना जी, बगैर मेरे कोई मुशायरा नहीं हो सकता
जी, सुना उनकी मैंने जी,
उनकी वजह से।
अच्छा
हाँ, उनकी वजह, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया थोड़ी ना आपको पसंद करने लगेगी
जी,
सारा बेंगलोर थोड़ी आपको पसंद, घर में चार लोग होते, चार तो पसंद नहीं करते एक को, है नहीं
जी, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है कि जिसके कारण हमें बहुत से
मुश्किल। हाँ, क्योंकि वो उनको मेरी शायरी पसंद थी
जी जी,
और बड़े बड़े मुशायरों में उनको बुलाया जाता था, तो लोग ये कहते थे भाई श्यामा सिंह को बुलाओ, नहीं तो वो तो आएंगे नहीं। और होता भी यही था, एक आध मुशायरे में मैं नहीं गई तो वो नहीं गए
जी जी। तो दक्षिण भारत में भी आपको काफी सुना जाता है मैम, मैंने देखा।
हाँ, बहुत 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 जी। तो बेटा कई अवार्ड भी मुझे मिले, राम रहीम एकता मंच से भी मुझे गोल्ड मेडल मिला, कार्ल्स मेडल
जी जी,
और वहाँ भी पश्चिम बंगाल के जो सरकार की तरफ से वो रसद खाद मंत्री जनाब कलीमुद्दीन शम्स
जी
के हाथ से मिला था। और इधर महाराष्ट्र में बॉम्बे में भी एक जमाना था कि बगैर मेरे मुशायरे नहीं होता था
जी,
हर 15 दिन में बॉम्बे का सफर। तो ऐसे रहा, ऊपर वाले ने बहुत बहुत कुछ दिया, बहुत नवाजा, मुझे कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल
जी। इतना संतुष्टि भाव है मैम आपके अंदर, आपसे बात करके मैम मुझे एक चीज समझ आ रही है कि अगर ईश्वर हमसे कुछ लेता है तो शायद सब्र दृष्टि हमें बहुत कुछ दे देता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के
लिए। हाँ बिल्कुल, बताए मैम बिल्कुल।
सुनिएगा,
सुनाइएगा मैम।
हम पुत्र बिछोह को भूल गए, जब गोद में लड्डू गोपाल जी आए। हम पुत्र बिछोह को भूल गए, जब गोद में लड्डू गोपाल जी आए। वस लागत है हमरे अंगना, फिर से हमरे वो लाल है आए। असुलागत है हमरे अंगना, फिर से वो हमरे लाल है आए। ओ घुंघराले है केश कजरारे नयन, और लाल तिलक दिए भालू पे आए। ओ बाहों में सिमट गई दुनिया मेरी, जब गोद मेरी नंदलाल है आए। बाहों में सिमट गई दुनिया मेरी, जब गोद मेरी नंदलाल है। बिल्कुल ये सच्ची हकीकत,
बहुत सुंदर मैम।
तो मैं अपने बेटे को, अपने बेटों को भूल गई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती कि हमारे दोनों बेटे आ गए, ये भावना बन गई मेरे लिए।
बहुत सुंदर मैम।
हाँ, उसी रूप में उनको देखती हूँ कि मेरे बेटे हैं बस। और अब मैं आपको गजल सुना रही हूँ, सुनिएगा। अभी जख्मों मेरा नाई नहीं है, अभी जख्मों मेरा नाई नहीं है। सबब ये है कि पुरवाई नहीं है, सबब ये है कि पुरवाई नहीं है। ओ तेरे किरदार में सब कुछ है लेकिन, तेरे किरदार में सब कुछ है लेकिन, समंदर जैसी गहराई नहीं है। समंदर जैसी गहराई नहीं है। उन निगाहों से तेरी जो गिर गए हैं, ये ऊपर वाले की तरफ मेरा इशारा है
जी।
निगाहों से तेरी जो गिर गए हैं, कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं है, कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं है। एक शेर भावना जी मेरे मिजाज का है।
बिल्कुल मैम, सुनाए।
चलो बन जाए उनकी रोशनी हम, चलो बन जाए उनकी रोशनी हम, वो आंखें जिनमें बिनाई नहीं है, वो आंखें जिनमें बिनाई नहीं है। और एक गजल के दो तीन शेर और हाजिर
कर दें। बिल्कुल सुनाए।
तेरी महफिल में ये सोचता कौन है, तेरी महफिल में ये सोचता कौन है, इन चराहों में जलवा नुमा कौन है, इन चराहों में जलवा नुमा कौन है, तेरी महफिल में ये सोचता कौन है, आओ ये फैसला वक्त पे छोड़ दे, आओ ये फैसला वक्त पे छोड़ दे, आओ ये फैसला वक्त पे छोड़ दे, बेवफा कौन है, बेवफा कौन है, बेवफा कौन है, बेवफा कौन है, तेरी महफिल में ये सोचता कौन है, ये बुरे वक्त ने हमको बतला दिया, ये बुरे वक्त ने हमको बतला दिया, ये बुरे वक्त ने हमको बतला दिया, आदमी कौन है देवता कौन है, आदमी कौन है देवता कौन है, तेरी महफिल में ये सोचता कौन है। ठीक है बेटे।
अरे मैम बहुत सुंदर, समझ आ रहा है कि आपको क्यों इतना चाहा जाता था देश विदेश हर जगह।
बस सरस्वती जी ने आवाज दे दी थी थोड़ी,
बहुत मधुर आवाज आपकी, इतना ले इतना सुर। अभी आप कह रही कि उम्र हो गई, मुझे तो लग रहा है कि सुनकर लग रहा है कि क्या बोलूं मैम, मैं बस मेरे पास शब्द ही नहीं है। और मैम चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी, उर्दू अदब में किस शायर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों?
बड़ा ही शायर सवाल पूछ लिया।
बिल्कुल
ठीक। दो तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे भी बहुत नवाजा
जी।
और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लेडीज शायरात में जो है
जी जी,
हालांकि हमारे उसमें, लेकिन परवीन शाकिर एक शायरा थी हमारी जिनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है
जी।
और वो तो है नहीं अब इस दुनिया में, वो 1994 में 31 दिसंबर को शायद उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि मैं बॉम्बे में थी वहां इस बात का जिक्र हो रहा था
जी जी।
और ये हमारी आज के दौर में अगर किसी से मैं प्रभावित हूँ मुतासिर हूँ तो वो अंजुम रैवर से
जी।
अंजुम रैवर से एक रिलेशन भी मेरा जुड़ा बाद में, वो मुझे माँ कहने लगी, मैं उनको बेटी कहने लगी और लगाव भी हुआ। उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। और मोहतरम वसीम बरेलवी साहब
जी,
जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत नेक इंसान है, बहुत शरीफ इंसान, अपने काम से काम, कोई दुनियादारी नहीं, करेक्टर के भी बहुत ही अच्छे
जी,
पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो, आज भी हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही हैं दो तीन लोग जो
जी जी। बहुत अच्छा लग रहा, मैं मन नहीं कर रहा, मैं कह सकती हूँ कि मन भर रहा ही नहीं आपको सुनकर, पर आपने पहले ही मुझे बोला आप कुछ व्यस्त हो अभी, तो क्या कहूँ मैं आपको। और मैं बता नहीं, मैं बता नहीं सकती मैम कि आपसे बात करके मुझे कितना सुकून कितनी राहत मिली है।
अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे पसंद किया, यही मेरे लिए सबसे।
मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मैम कि आप आई,
कोई नहीं,
और आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और फिर से दोबारा आने की आपको आज मेरे से आपको आज वादा करके जाना होगा कि फिर जल्दी आओगे, क्योंकि अभी हमने आपको सुना ही नहीं कुछ।
ठीक है बेटे, मैं आपको कभी कभी ऐसे ही सुना दिया करूं।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
ठीक है
जी मैम, शुक्रिया मैम,
राधे राधे।
राधे राधे मैम।